ओम शांति। तो आज हम आज की मुरली रिवीजन करेंगे, सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। तो आज की मुरली का जो सार था वो क्या था, हेडिंग क्या थी? दिव्यता ही संगमयुगी ब्राह्मणों का सिंगार है। तो ये दिव्यता क्या है, किसको कहेंगे दिव्यता? कल की मुरली में आ चुका है स्लोगन में, दिव्यता अर्थात क्या, दिव्य गुणों के आधार पे संकल्प बोल और कर्म बनाना ही दिव्यता है। तो आज बाप दादा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि विधाता, दिव्य बुद्धि दाता और दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि दाता, कौन से बच्चों को देख रहे हैं? दिव्य जन्मधारी बच्चों को देख रहे हैं। तो हम सब कौन है? दिव्य जन्मधारी। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारा जन्म ही दिव्य और अलौकिक है। शिव बाबा के लिए भी कहते हैं ना कि उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है, तो उनके द्वारा हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हमारा जो जन्म है वो दिव्य और अलौकिक है। तो बाबा ने कहा है कि बाप दादा ने आप लोगों के जीवन होते ही क्या किया, संकल्प भी आपके दिव्य, जीवन भी दिव्य, बोल भी दिव्य और कर्म भी दिव्य। तो दिव्यता की मूर्तियां बाबा ने हम सबको बनाया है। तो एक होता है साधारणता और दूसरा होता है दिव्यता। तो हम सभी दिव्यता से संपन्न आत्माएं हैं। तो जो दिव्यता से संपन्न आत्माएं होगी उनकी क्या निशानी होगी, उनके सामने कोई भी साधारण आत्मा आएगी तो वो क्या होगा, साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूति करेगी। वो कोई भी आत्मा उनके समीप आएगी, साधारण आत्मा आएगी और दिव्य अनुभूति करके जाएगी, तो ये उनकी परख होगी। दूसरी बात बाबा ने कहा कि आप लोग भी जो है दुनिया के लोगों की तरह ही कर्म करते हैं, लेकिन आप तन से कोई भी साधारण कर्म नहीं कर सकते हैं, संकल्प से भी साधारण संकल्प नहीं कर सकते हैं, धन को भी साधारण रीति से यूज नहीं कर सकते हैं। दुनिया के लोग जैसे करते हैं वैसे ही हम करते हैं, जैसे दुनिया के लोग व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं और क्या नौकरी करते हैं, और माताएं क्या करती है, खाना बनाती है। तो दुनिया के लोग भी यही करते हैं और हम भी यही करते हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से हमारा बहुत ही न्यारा है। बाबा ने कहा है न्यारा होना चाहिए और न्यारा है, कैसे? क्योंकि हम जो भी संकल्प कर रहे हैं एक संकल्प भी श्रीमत के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं, एक संकल्प भी हम साधारण नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। दूसरा बोल भी साधारण नहीं कर रहे हैं, कर्म भी हमारा साधारण नहीं है, और तन मन और धन वो भी साधारण नहीं है। विशेषता हमारी क्या है कि मन में भी हमारे साधारण विचार नहीं चलते, बोल भी हमारे साधारण नहीं है, और धन भी हम साधारण रीति से यूज नहीं करते हैं, इसलिए दुनिया के हिसाब से हम विशेष हो गए। तो हमारा जो तन मन और धन जो है उसके हम ट्रस्टी है, वो हमारा नहीं रहा है, किसका हो गया, बाबा का हो गया। अभी तो बाबा को देना अच्छा लगता है, क्या फायदा होगा देने से? तो भक्ति में भी इसका एक उदाहरण बताते हैं कि कैसे, मतलब भगवान जबरदस्ती हम बच्चों से लेते हैं और हमारा भाग्य बनाते हैं। भक्ति में दिखाते हैं कि सुदामा श्री कृष्ण जी के पास जाता है और वो उनकी आवभगत करते हैं भगवान, फिर बोलते हैं मेरे लिए क्या लेके आया, तो बोलते कुछ नहीं, तो चावल मुट्ठी, तीन मुट्ठी चावल था, उनको छिपा रहा था पीछे। तो तो बोला कुछ तो लाया होगा, ऐसी बात तो नहीं है। बोला नहीं, कुछ नहीं लाया। फिर देखा, छिपाते हुए देख लिया श्री कृष्ण जी ने, तो बोला अरे सुदामा ये क्या कर रहा है कि तू, ये तीन मुट्ठी तू मुझसे छिपा रहा है, तीन मुट्ठी में तो मैं तीनों लोक तेरे पे मार सकता हूं। तो एक मुट्ठी खाई बोला एक लोक, दूसरी मुट्ठी खाया बोला दूसरा लोक, तीसरी मुट्ठी खाने ही लगे थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोला भगवान ये क्या कर रहे होगे, आप सुदामा बन जाओगे या श्री कृष्ण बन जाएगा। तो बोल फिर पूछा उनसे कि भाई आपका क्या है नियम देने का, ऐसा इतने भावना में क्यों भेजाते हो आप, थोड़ी तो समझ होनी चाहिए रुक्मणी का। आपको तीन मुट्ठी दिया, आप भावना में इतने बह गए कि आपने तीनों लोगों का राज देने के लिए तैयार हो गए, क्या है आपका फार्मूला। तो भगवान ने कहा, वहां तो श्री कृष्ण ही बताते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा तो सीधा सा नियम है कि जो मुझे पूरा देगा मैं भी उसको पूरा दूंगा। तो सुदामा के पास क्या था, चावल मुट्ठी जो था वही पूरा था, और भगवान के पास क्या था, तीनों लोक था, तो रिटर्न में तीनों लोक मिल गए। तो इस समय हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, शरीर भी हमारा कैसा है, रोगी वाला है, मन भी कैसा है, कमजोर है, अशांत है, दुखी है, और धन भी कैसा है, हलचल वाला है, दुखदाई वाला है। तो बाबा को हम दे देते हैं तो क्या होता है, जन्म जन्म के लिए हमें तन भी अच्छा मिल जाता है, मन भी अच्छा मिल जाता है, और धन भी अच्छा मिल जाता है, और संबंध भी अच्छे मिल जाते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है कि मिलते हैं या नहीं मिलते, इसका क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ यह है कि देवी देवताओं के चित्रों को आप देखो, कि हम इस पढ़ाई के द्वारा क्या बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। तो देवताओं को देखो आप, उनको चारों प्रकार का सुख है, तन का भी सुख है। तो आप देखोगे कि एकदम कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं दिखाई होगी जो हॉस्पिटल में भर्ती हो और बोतल चढ़ रही हो, कोई देवता की फोटो देखी ऐसी नहीं देखा ना। और ही जो जैसी भावना से जाता है उसकी तन की बीमारी आज तक भी दूर होती है। ऐसे ही मन से वो इतने सुंदर बने थे, सत्यम स्वयं सुंदरम ने इतना सुंदर उनको बनाया कि आज तक भी दर्शन करने जाते हैं लोग। कहां जा रहे हो, बोला दर्शन करने। बोला कल भी तो गए थे, बोला नहीं वहां जाएंगे तो दिन अच्छा जाता है, तो जाते हैं ना। तो मन से हम यहां पे अच्छे बने तो वहां पे आज तक भी आपके मंदिरों में पूजा हो रही है और दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आप दर्शनीय मूर्त बने हो इसलिए दर्शन कर रहे हैं। फिर धन का सुख, आप देवताओं को देखो ऊपर से नीचे तक धन धाने से सजे सजाए दिखाते हैं ना। तो धन का भी सुख था, और कोई भी उनके सामने जाएगा तो क्या करेगा, धन को कहां डालेगा, चरणों में डालेगा। और आज के मनुष्य ने धन को कहां बिठा रखा है, सर पे, इसलिए हेडक हो गया। और उन्होंने धन को कहां रखा, चरणों में, कि धन जरूरी है पर सब कुछ नहीं है। और आज के मानव ने क्या किया, धन के चक्कर में आके कोई अपनी मां को मार दे, धन के चक्कर में आके भाई भाई को मार दे, धन के चक्कर में आके मित्र मित्र को मार देता है, और फिर बाद में दुख पाता है। तो ये धन दुखदायी हो गया ना। बैंकों में भी रखते तो टैक्स का प्रॉब्लम, उसकी भी चिंता बनी रहती है, टैक्स दो तो भी प्रॉब्लम, न दो तो भी प्रॉब्लम, तो कैसा धन है। और देवी देवताओं को सहज भाव से जो भी आता है धन डालते जाते हैं। और जन का सुख, आज अगर मान लो कि किसी के पास धन बहुत है तो पड़ोसी मांगने वाले आ जाएंगे, नहीं दो तो नाराज हो जाएंगे, दोगे तो वापिस नहीं देंगे, तो भी टेंशन है। लेकिन देवी देवताओं के आगे क्या होता है, जो भी आता है सब धन को चरणों में डालता है, और जो भी आता है मंत्री हो जाए संतरी हो सब नतमस्तक हो जाते हैं, मतलब जन का भी उनको सुख था। और कल की मुरली में भी देखो बाबा ने क्या बोला, बोला इस पढ़ाई में सारी पढ़ाइयां समाई हुई है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी कुछ आप बनना चाहते हो सब समाया हुआ है। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है जिस पढ़ाई के अंदर सभी पढ़ाइयां समाहित है, और पढ़ाने वाला खुद ज्ञान का सागर है, तो कितना नशा होना चाहिए। तो इस पढ़ाई के द्वारा यह मिलता है, इतनी ऊंची हमको प्राप्ति होती है। फिर बाबा ने क्या कहा कि अभी क्या करना है कि जमा का खाता बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे बहुत भोले हैं कि भोले कैसे हैं कि भाई मैंने पूरे दिन भर में क्या किया, किसी को भी दुख नहीं दिया, व्यर्थ नहीं सोचा, कोई मतलब मेरे से गलती नहीं हुई। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, ये तो अच्छा है कि वर्तमान को तो अच्छा बनाया, पर भविष्य में जमा क्या किया, जमा क्या किया ये बताओ। तो इसके लिए क्या सोचना है कि मुझे संकल्प से भी जमा करना है, बोल से भी जमा करना है और कर्म से भी जमा करना है। दुख तो नहीं दिया है, लेकिन जो दिव्य आत्माएं हैं वो हर कदम में उनके सामने जो भी आएगा सुख की अनुभूति करे। पहला तो ये है कि दुख तो नहीं दिया पर सुख देना है सबको। दूसरा है व्यर्थ तो नहीं सोचा पर बेस्ट सोचना है, ठीक है ना। तो जमा का खाता बढ़ाना है, और जमा का खाता होगा तो आगे चल के क्या होगा, आत्माएं अभी इस जीवन से परेशान हो गई है, दुखी हो गई है, तो वो चाहती है कि भाई जीवन के अंदर कुछ नवीनता हो, कुछ अलौकिकता हो। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के लिए इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे ही सब लोग भटक रहे हैं। भटकते भटकते कहां पहुंचेंगे, आपके पास ही पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपके खजाने भरपूर नहीं होंगे तो उनको दे नहीं पाएंगे, फिर पश्चाताप होगा कि आप तो इतने समय से ज्ञान में चल रहे हो, हमें दो। तो अगर जमा नहीं होगा तो क्या देंगे, नहीं दे पाएंगे ना। तो जमा का खाता बढ़ाना है। बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का जमा का खाता बहुत कम है, उसका बाबा ने कहा बाकी सुनाएंगे हम। फिर बाबा ने कहा सने के अंदर आप लोग सभी पहुंच गए हो, बाप ने बुलाया और आप सब, तो बाबा इस सने का रिटर्न कितना देगा, एक गुना सने का अनेक गुना सने का रिटर्न देगा। जैसे आप लोग भी, आपको बुलाया और पहुंच गए, और जो भी नियम बताए उसके लिए तैयार हो। सबको बोला गया कि मास्क लगा के रखना है और भट्टी करनी है, तो ये कितनी बड़ी तपस्या है। मास्क भी लगाने के लिए तैयार हो गए, कोरोना काल के अंदर धन का भी प्रॉब्लम है तो भी सब तैयार हो गए, टिकट करा के आ गए। तो वो भी किस क्यों किया, सने के कारण। कई लोगों ने मना भी किया होगा कि भाई अभी कोरोना काल चल रहा है, कहीं पे कोरोना लग गया तो खुद भी जाओगे परिवार को भी ले जाओगे, लेकिन बाबा ने बुलाया और आपने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, सब आ गए। और बाबा ने पटरानी किसी को नहीं बनाया यहां पे, उस टाइम तो पटरानी बनाया था और बोला चार दिन में जाना है, तो चार दिन में तो यहां भी जाना है, पर यहां भी कई लोग जानबूझ के पटरानी बन रही थी। रात को हम देखे कि अनिल भाई ढूंढ रहा था कि कौन पटरानी है उसको खटरानी बनाने के लिए, तो वो चक्कर लगाया कई रूमों में, तो वो बोला नहीं हम तो पटरानी ठीक है, बोला खटरानी बनो, तो ढूंढ ढूंढ के पटरानियों को खटरानी बनाया गया। तो ये सब सने का रिटर्न है। बाबा ने कहा है कि जैसे अभी ऐसे समय के अंदर आप आए हो, ठीक है, धन का भी प्रॉब्लम है और ऐसे सिचुएशन है, तो आगे चल के जब ऐसी सिचुएशन होगी संसार के अंदर, तो ऐसे समय में बाप की आपको ऑटोमेटिकली मदद मिल जाएगी, क्योंकि बाबा जानता है कि इन्होंने सने का रिटर्न दिया है। तो बाप भी ऐसे समय में जब कहीं से भी सहयोग नहीं मिलेगा, कोई संबंधी साथ नहीं देगा, आपका धन साथ नहीं देगा, ऐसे समय में फिर बाबा सबको साथ देगा, क्योंकि आपने सबको बाबा को साथ दिया। तो बाबा ने कहा है कि चलो ये तो कुछ भी नहीं है क्या, भक्ति मार्ग के अंदर आप मूर्तियों के आगे कितने चक्कर, मतलब भीड़ लगाते थे रात रात भर, तब जाके नंबर आता था, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से सोफे पे बैठे हैं, खाना भी बराबर मिल रहा है, रहने को भी मिला है और बना बनाया भोजन भी अच्छा मिल रहा है, माताओं को भी भोजन से छुट्टी मिल गई है, और भाइयों को भी भोजन का ही प्रॉब्लम होता है तो उससे भी छुट्टी मिल गई है सबको। तो अभी निश्चिंत होके तपस्या कर सकते हो, ये मौका है, आगे मिले कि न मिले। ज्ञान सरोवर में किसी को भी योग भट्टी का चांस आज तक नहीं मिला है, तो ये एक चांस मिल गया है कि नहीं। तो ये चांस भी क्यों मिला है कि आपने जो कोरोना काल में तपस्या की है तो बाबा ने देखा है, तो उस तपस्या के एवज में आपको बुलाया गया है, और पेपर भी आपके लिए गए हैं कि भाई आते हैं कि नहीं आते, डर रहे हैं कि नहीं, तो आप निडर होके आ गए हो, तो पास हो गए ना सभी लोग। तो बाबा ने कहा हर बात में इजी रहना है, कुछ भी हो इजी, अगर हमारी इजी नेचर इजी होगी तो सब परिस्थितियां सब इजी हो जाएगी, और अगर हम लोग टाइट होंगे तो हर चीजें टाइट हो जाएगी। तो सरल स्वभाव, जो भी मिल रहा है सब उत्तम है, हर बात में कल्याण है। तो सरलता का गुण को अगर हम धारण करेंगे तो क्या होगा, तपस्या हमारी सहज ही होगी। नहीं तो यही चिंता लगेगी, मेरे को तो सही अकोमोडेशन मिला ही नहीं, मैं क्या तपस्या करूं। ऐसे और भी कुछ हो सकता है कि ये पड़ोसी तो थराटे मार रहा है, तो इस तरह की बहुत कुछ बातें हो सकती है। लेकिन अगर हम सरल रहेंगे तो क्या हो गया, क्या सोचेंगे कि भाई चलो खराटे क्या है, बाहर तो बैंड बाजे भी बजते हैं कि सिटी के अंदर, और वहां भी फिर आराम से सोते हैं क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उसके उसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते। लेकिन पड़ोस में खराटे मार रहा है तो हमको चिंता लगती है, खराटे मार रहा है, सोने नहीं दे रहा है। तो वास्तव में खराटे तकलीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन खराटे मारते ही जो आपके विचार आपको चला रहे हो ना उसके प्रति, वो तंग कर रहे हैं। खराटे तो और ही नींद का साज है वो, लेकिन खराटे चलने के बाद जो विचार चलते हैं उसके आधार पे हमारी नींद उड़ जाती है। तो हर बात में सरल रहना है, और ये सोचना है कि इस खराटे में मुझे नींद लेके दिखाना है, ये पेपर है और इस पेपर में मुझे 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, तो क्या होगा, वो चीज सरल हो जाएगी। और अगर मान लो इसके बारे में सोचोगे तो क्या होगा, सोच सोच के जो नींद आने वाली होगी वो भी नहीं आएगी, और विकर्म भी हमारा बन जाएगा क्योंकि हम दूसरे के प्रति सोच रहे हैं। तो सरलता। और फिर बॉम्बे वालों से बाबा बात कर रहे थे कि बॉम्बे वाले जो है सभी खजानों से संपन्न है, कोई खजाने की कमी तो नहीं है। तो संपूर्ण और संपन्न, तो जहां संपन्नता है वहां संपूर्णता है। तो संपूर्ण किसमें बनना है, चारों सब्जेक्ट में, ज्ञान में भी, योग में भी, धारणाओं में भी, सेवा में भी, सब में संपन्न बनना है। तो जो संपन्न होता है वही समीप भी होता है। तो बाबा ने फिर पूछा, चेक करो वही संपन्न कहां तक हो, 8 की माला के समीप हो या 100 की माला के समीप हो या फिर 16,000 की माला के समीप हो, किस माला के समीप हो, तो अपने आप को चेक करो। तो जैसे समीप रहना अच्छा लगता है ना स्थूल में, ऐसे ही समीप स्थिति में भी हम समीप रहें और सदा खुश रहें। तो ये बॉम्बे वालों से बाबा बात कर रहे थे। उसके बाद दूसरा ग्रुप कौन सा था, गुजरात और पुणे। तो उनसे बाबा ने क्या कहा, तो बाबा ने कहा दृष्टि लेने और देने का अभ्यास है, दृष्टि लेने और देने का अभ्यास कितना है के? नहीं है तो उसको बढ़ाओ, क्योंकि आगे चल के इस सेवा की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के ऐसा समय आएगा कि वहां पे वाणी की सेवा नहीं होगी। तो जितना यहां पे ये अभ्यास होगा दृष्टि के द्वारा लेने देने का, उतना ही हम सफल हो पाएंगे। फिर बाबा ने मूर्तियों का भी उदाहरण दिया कि जैसे आपकी जो जड़ मूर्तियां हैं वो बोलती थोड़ी है क्या, लेकिन वो क्या करती है, उनके द्वारा हमें नैनों के द्वारा, मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है और कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो हम आज तक जाते हैं। तो हमें दृष्टि की शक्ति लेने देने का भी अनुभव बढ़ाना है, क्योंकि जैसे वाणी की शक्ति का तो हमको मालूम है कि जैसे हम मुरली सुनते तो पावर मिलता है, क्लास सुनते तो हम पावर मिलता है, ऐसे ही दृष्टि लेने देने की भी शक्ति बढ़ानी है। और बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही है, तुम ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य क्या है, ज्ञान सूर्य से शक्तियां लेना और इस विश्व को देना, बाकी सब काम तो निमित्त मात्र है, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये शक्तियां लेना और देने का काम कौन कर सकता है, जो सच्चे और पक्के ब्राह्मण होंगे। तो लेना और देना है। तीसरा ग्रुप कौन सा था, आंध्रा का, आंध्रा और कर्नाटक का। तो आंध्रा और कर्नाटक वालों के लिए क्या बोला है कि सारे क्लब में आपका हीरो कौन सा पार्ट है, श्रेष्ठ पार्ट है। तो श्रेष्ठ पार्ट है तो अगर इस श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ ताकि स्मृति रहेगी तो श्रेष्ठ बनाने वाले की भी हमको स्मृति बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा, हमें सहज योगी बन जाएंगे हम। तो श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, बाबा। तो संबंध याद रहेगा तो हम सर्व संबंधी ऑटोमेटिकली बाबा हमारा बन जाएगा। और वरदान में क्या था, एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रह के बाप दादा के दिल तख्त नसीन भव। तो बाबा ने कहा है कि बाप दादा का जो दिल तख्त है वो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उस श्रेष्ठ तख्त के ऊपर विराजमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अचल अडोल स्थिति के आसन पे विराजमान होना पड़ेगा। अगर उस स्थिति पे स्थित नहीं है तो वो आसन पे हम बाप दादा का जो दिल तख्त है उसके ऊपर विराजमान नहीं हो सकते। तो ये सदा ये स्मृति रखो कि मैं अकाल मूरत आत्मा हूं, बरकुटी रूपी कुटिया में विराजमान हूं। तो अकाल तख्त नसीन बन के रहेंगे तो बाप दादा का दिल तख्त नसीन हमें सहज मिल जाएगा, और बाप दादा का दिल तख्त नसीन अगर हम बन गए तो क्या फायदा होगा? भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी या विश्व के तख्तधारी सौतई बन जाएंगे। स्लोगन क्या था? क्या था? शुभ चिंतन द्वारा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भयानक बीमारी आ गई तो क्या सोचेंगे हम, बताओ? कोई बीमारी आ गई तो ये सोचेंगे मैं भगवान का हूं, फिर भी मेरे को बीमारी आ गई, इतनी बड़ी वो भी, छोटी आती तो भी चलता, भगवान भी कोई मदद नहीं करता, तो क्या सोचोगे कि भाई बीमारी आई है तो जाएगी। दूसरा, जन्म जन्म का ऊपर धर्मराज जी जहां तेल में तलेंगे वहां तेल में तलना नहीं पड़ेगा, यहीं पे चुकतु कर लो सहज भाव से, ठीक है ना? और क्या सोचेंगे बीमारी में? हाँ, हिसाब किताब तो चुकतु हो गया। और ये सोचना ये पेपर है, इस पेपर में मुझे फुल मार्क्स लेना है, ये नहीं सोचना ये बीमारी है या फलाना है, लेकिन ये सोचना है कि ये पेपर है और इस पेपर में मुझे फुल पास लेना है, 100 में से 100 मार्क्स लेना है, तो वो बात हल्की हो जाएगी। और क्या सोचेंगे? और ये सोचना है कि ये शरीर मेरा है ही नहीं, मुद्दा ही खत्म, मैं तो आत्मा हूं। जिसका शरीर है वो जाने ना अपने को क्या तकलीफ है, जब दे दिया बाबा को कि ये शरीर बाबा आपका है तो बीमारी भी उसी की हो गई ना, अपनी थोड़ी हो गई। लेकिन जब सोचते मेरा शरीर है के, तो बीमारी भी झेलो। अगर ये स्मृति हो कि नहीं मैं तो आत्मा हूं तो क्या होगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसी अनेक बातें हमारे जीवन के अंदर आती है, नेगेटिव बातें, तो हम उनको परिवर्तन करें। ये नहीं सोचे ये ऐसा है वैसा है, वो तो है जो है, लेकिन मेरा काम क्या है? शुभ चिंतन करना। और शुभ चिंतन वाले का काम क्या है? कोई दूसरे लोग दुर्व्यवहार करे, मान लो आपके साथ उल्टा सीधा बोले, ठीक है ना, बात बात में रोक के टोक के आपको आगे न बढ़ने दे, आपकी स्थिति को डगमग करे, तो क्या करोगे आप? भी क्या करोगे? बोलता ही जा रहा है दिनों दिन, अनेक दिनों से बोलता जा रहा है, तो क्या करा, मजा चखाना चाहिए या छोड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए कि भाई वो अपना पार्ट बजा रहा है, मुझे अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाना है, ठीक है ना? वो अपना पार्ट बजा रहा है, वो विलियन है तो विलियन का पार्ट बजाएगा, लेकिन मुझे अपना हीरो पार्ट बजाना है। अगर ये स्मृति होगी तो क्या होगा, उसका असर आएगा। और उसको भी पेपर समझ लो, भाई पेपर है ये, और ये भी समझ सकते हो इसके साथ में अकाउंट भी तो है ना, क्योंकि अनेक जन्म हम साथ रहे हैं, कोई बेटा बनके कोई कुछ बनके, तो ये सब यहां पे मिले हैं अनेक जन्म, तो अब हिसाब किताब कहां, यहीं तो चुकतू करेंगे वो, तो घर जाने से पहले अकाउंट चुकतू कर लेंगे तो ऊपर धर्मराज जी गदा लेके खड़े होंगे, तो उस गदे से बच जाएंगे, सही है ना? तो ये सोचना है कि भाई यहीं चुकतू कर लेंगे, तो जो भी कुछ यहीं चुकतू हो जाए तो अच्छा है ना, जैसे हल्के हो जाते हैं ना। जैसे मान लो कोई हमारे में कुछ मांगता है तो अगर मान लो हम दे देते हैं उसको, तो क्या होता है, एकदम हल्कापन आ जाता है। और हमारे जीवन हल्कापन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ब्राह्मणों का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, ब्राह्मण बनने के बाद हम सब का जो लक्ष्य है निरंतर योगी बनना, योग का सुख लेना, यही है ना। अगर मान लो कि हम ऐसी छोटी मोटी बातों में, दूसरों के गलत व्यवहार में अगर परेशान होते रहे, भारी होते रहे, तो हम योगी बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। तो हल्का रहना बहुत ही आवश्यक होगा। तो ऐसे ही हमको एक आदत सी बना लेनी है कि इस बात में जैसे ही आपके मन में थोड़ा दर्द पैदा हो ना, नेगेटिव सोचते ही, तो सोचे कि इसका हल क्या है, बाबा ने इसका हल क्या बताया, तो लिखो आप 5-7 बातें लिखो, आप देखेंगे एकदम हल्के हो जाएंगे।